या वर राम चंद्र की जय, मोर मुक्त बंसी वाले की जय। आज गीता जयंती है, इसलिए गीता के ऊपर ही कुछ कहना चाहिए। पंडित जी ने गीता के विषय पर बहुत अच्छी बात कही, काम क्रोध के त्यागने की बात कही। भगवान ने गीता की 16वें अध्याय के 21वें श्लोक के बीच के माँ अर्जुन को विशेष लक्ष्य करके ये बात कही है कि त्रिविधं नरक सेदं द्वारं नाशम आत्मनः काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत्त्वं त्यजेत्। इस वास्ते हे अर्जुन, ये तीन जो है ये साक्षात नरक के द्वार हैं, काम क्रोध और लोभ, और आत्मा का पतन करने वाले हैं, इसलिए इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। और फिर कहते हैं कि इन तीनों को त्याग करके के फिर आत्मा के कल्याण के वास्ते जो आसन करता है वो मुक्त हो जाता है, और मुक्ति के योग होता है, उसके लिए भी ये काम क्रोध के त्याग की बात कही। और काम और क्रोध जब तक रहते हैं तब तक उसको सुख नहीं होता। भगवान एक साधक को कह रहे हैं काम और क्रोध के विषय में, सकनोति है ये सो ढूं प्राक शरीर भी मोक्षनाथ, काम क्रोध भवंग वेगं से युक्त से सुखी न रहो। काम और क्रोध का जो वेग है इसको शरीर के रहते रहते ही इसको अपने सहन कर लेता है, वही पुरुष युक्त और सुखी और युक्त माने योगी है। शरीर विमोक्षनाथ प्राक, शरीर छूटने के पहले पहले ही काम और क्रोध के वेग को जो सह लेता है, यानी काम क्रोध को जो जीत लेता है, वही मनुष्य संसार के बीच के माँ सुखी है, और वही ऐसो योग युक्त योगी है। काम और क्रोध का जब अत्यंत अभाव होता है तभी परमात्मा की प्राप्ति होती है। ये भगवान ने गीता की 5वीं अध्याय के माँ कहा है, 5वीं अध्याय का 23वां श्लोक है। और जो परमात्मा को प्राप्त हो जाता है उसमें तो क्रोध का अत्यंत अभाव हो जाता है, ये भगवान ने 5वीं अध्याय के 26वें श्लोक में बताया है। काम क्रोध युक्तानां यतिनां यच्चेत्साम अवितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम। जो काम और क्रोध से रहित है ऐसे जो यत्नशील जो सन्यासी हैं, जिन्होंने चित्त को जीत लिया है, उनके लिए सब ओर से थी चारों तरफ से थी ऐसो ब्रह्म ही ऐसो प्राप्त है। तो काम क्रोध के अभाव के बिना मुक्ति नहीं होती, ये बात गीता के माँ जगह जगह बतलाई है। पंडित जी ने जो बात कही उसका मैं समर्थन करता हूँ। गीता के बीच के माँ बहुत सी बातें बतलाई है। गीता के बीच के माँ कर्म योग की बात है, भक्ति योग की बात है, ज्ञान योग की बात है, और एक एक साधन से थी समझो कि परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। कितने आचार्य ऐसा मानते हैं कि कर्म योग जो है वो पहली सीढ़ी, और भक्ति योग जो उपासना जो है ये दूसरी सीढ़ी, और ज्ञान योग जो है ये तीसरी सीढ़ी है, और साधन ज्ञान का जो फल है वो अपने परमात्मा की प्राप्ति, वो अंतिम सबका फल वो चौथी सीढ़ी है। इस प्रकार से थी ऐसो कितने कहते हैं, ये क्रम बतलाते हैं कि पहले निष्काम भाव से कर्मों का आचरण करना चाहिए, और उसके बाद उपासना, और उसके बाद में ज्ञान। ये कर्म भी ठीक है, इसके लिए हम ना नहीं करते, किंतु ऐसा नहीं कि यही कर्म है और दूसरा नहीं। स्वामी शंकराचार्य जी आदि जो अद्वैतवादी हुए हैं उनका कहना इसी प्रकार का है कि यही कर्म है। दूसरे जो भक्त हुए हैं जैसे स्वामी रामानुजाचार्य जी, उनका ये कहना है कि पहले कर्म योग ये तो ठीक है, उसके बाद के आत्मज्ञान, आत्मा का ज्ञान होना चाहिए और उसके बाद में भगवान की भक्ति। तो पहली सीढ़ी कर्म योग और दूसरी सीढ़ी जो है भक्ति योग और तीसरी सीढ़ी जो है तो ज्ञान योग। ऐसा नहीं, पहली सीढ़ी कर्म योग और दूसरी सीढ़ी ज्ञान योग और तीसरी अंतिम जो सीढ़ी है वो भक्ति योग, और भक्ति का जो फल है वो परमात्मा की प्राप्ति। इस प्रकार से ऐसा कहते हैं। तो आचार्य जन जो है वे महान पुरुष है, वे अपने अपने सिद्धांत के अनुसार अपनी अपनी प्रक्रिया के अनुसार कहते हैं, पर उनका कहना बड़ा उत्तम है, उसी के अनुसार उनके अनुयायियों को, उस मत के मानने वालों को, उस संप्रदाय के मान। किंतु भगवान गीता में कहते हैं कि ये कर्म भी ठीक है। स्वामी शंकराचार्य जी ने जो बताया ये ठीक है, संन्यासस्तु महाबाहु दुख मार्तु मैं योग कहो। संन्यास माने जो सांख्य योग है, जो ज्ञान योग है, पहले कर्म योग का साधन किए बिना ज्ञान योग की सिद्धि ऐसा नहीं होती। और स्वामी रामानुजाचार्य जी कहते हैं कि भक्ति जो है वो सबसे बढ़कर है, उसका फल है सो अपने परमात्मा की प्राप्ति है। परमात्मा की प्राप्ति के बाद और कोई अन्य साधन करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती, और भगवान की भक्ति के बाद भी कोई ज्ञान के साधन की आवश्यकता नहीं रहती। भगवान की भक्ति से थी अपने आप ही उसको ज्ञान हो जाता है, भगवान उसको ज्ञान देते हैं। तेषां सतत युगतानां भजतां प्रीति पूर्वकम् ग्रामी बुद्धि योगम तंग ये न मामु पयांति थे। तेषां सतत युगतानां पूर्व के बीच के माँ जो साधन बतलाया, उसने जो नित्य युक्त होकर के निरंतर जो भगवान की प्रीति पूर्वक जो भक्ति करते हैं, पूर्व में क्या बतलाया कि मत चित्ता मत गत प्राण बोधियंत परस्परम कथियं तस्य मां नित्यं तुष्यन्ति चरमन्ति च। भगवान कहते हैं जिनका मेरे में इंचित है वह मत चित्ता, जैसे भागवत में बताया मन मनस कहा गोपियों के लिए, वे गोपियां मेरे में मन वाली थी। तो मत चित्ता मत गत प्राण, जिनका मेरे लिए जीवन है वह मदगत प्राण, जैसे मच्छी का जो जीवन है जलगत है, बिना जल के वो जी नहीं सकती। इस प्रकार से थी जिनका मदगत प्राण है, जो मेरे बिना जी नहीं सकते, मैं जिनके जीवन का आधार हूँ वे मदगत प्राण। और बोधयंत है परस्परम, एक दूसरे को मेरा तत्व और हैस को जनाने के लिए, एक दूसरे को मेरा तत्व और हैस जनाता हुआ जो परस्पर के बीच के वहाँ बातचीत करता है, या यूं कहिए बातचीत करने का उद्देश्य यह है कि मेरा तत्व और रहस्य आपने एक दूसरे को जनाते रहते हैं, वे बोधियंत है परस्परम और कथियं तस्य मांग नित्यम। मेरे गुण प्रभाव तत्व है से, मेरे नाम रूप और लीला धाम और मेरी महिमा का मेरे भक्तों के बीच के माँ श्रद्धा भक्ति और प्रेम से थी, निष्काम भाव से थी, जो सदा अपने कथन करते रहते हैं, उनका वर्णन करते रहते हैं, कथियं तस्य मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। और इस प्रकार से थी संतोष को प्राप्त होते हैं और मुझ परमात्मा के माँ मन और इंद्रियों के द्वारा रमण करते हैं, उनके लिए भगवान कहते हैं कि तेषां सतत युगतानां भजतां प्रीति पूर्वकम्। इस प्रकार से नित्य निरंतर मेरे में लगे हुए और प्रीति पूर्वक जो मुझको भजते हैं उनको मैं वह बुद्धि योग यानी ज्ञान देता हूँ कि जिससे मेरी प्राप्ति उनको हो जाती है। ये भगवान ने गीता की 10वें अध्याय के 9 और 10 के श्लोक में ये बात कही। अब और थोड़ा गंभीरता से विचार करना चाहिए, भगवान के सिद्धांत के अनुसार थोड़ा गंभीरता से विचार करना चाहिए। कितने जो वर्तमान के बीच में जो कर्मयोगी हुए या कर्मयोग को प्रधान मानने वाले हुए या हैं, वे कहते हैं कि गीता जो है इसमें तो कर्मयोग का ही विषय है, अर्जुन को कर्मयोग का उपदेश देकर के और भगवान ने अर्जुन का उद्धार किया। दूसरे कहते हैं कि अर्जुन तो भगवान का सखा था, वे तो मुक्त ही था, अर्जुन को निमित्त बना करके और भगवान ने संसार के कल्याण के लिए ये गीता शास्त्र अर्जुन को कही। अब और भी विचार करना चाहिए, कितने कहते हैं कि गीता के माँ तो भक्ति भरी हुई है, भक्ति से ओतप्रोत है, अर्जुन का भाना करके संसार के कल्याण के लिए भगवान ने भक्ति का प्रचार किया, गीता में भक्ति ही भक्ति है। और कितने ही कहते हैं कि नहीं, ये तो भक्ति और समझो कि कर्म योग ये तो अनुसंगिक है, गीता तो ज्ञान से परिपूर्ण है, ये तो अद्वैत रूप अमृत को बरसाने वाली है। शंकरानंद जी जो टीका उसमें तो समझो जितने जो भक्ति के श्लोक हैं कर्म योग के श्लोक अधिकांश में उन्होंने तो समझो कि ज्ञान योग में अद्वैत के माय सबको ऐसा घटा। तो ये अपनी अपनी सूझ है, इसके लिए हम ये नहीं कहते कि स्वामी शंकराचार्य जी ने समझो कि ये गीता जो है सो ज्ञान योग के विषय में कही, उनको ज्ञान ही पसंद था, उन्होंने ज्ञान योग में ये घटाई, उनका सिद्धांत अद्वैत बात था, इस वास्ते इसको अद्वैत के विषय में ही ले गए। हम ये नहीं कहते कि स्वामी रामानुजाचार्य जो है वे भक्त हुए, इस वास्ते उन्होंने जो ज्ञान के जो श्लोक है उनको भी भक्ति के बीच में ढाल दिया। हम ये नहीं कहते कि तिलक जी जो है वे एक प्रकार कर्म योग को मुख्य मानते थे, उनको एक प्रकार से ये कहना कि वे इनमें पक्ष कर करके और गीता को कर्म योग का एक ग्रंथ अपने बतला दिया। उन सब की अच्छी नीयत थी, उनकी जो सूझ है वो सबकी प्रशंसा के लायक है, उन्होंने अपने अपने समझ के अनुसार जैसा उनको अपने समझ में आया वही बात कही। किसी के ऊपर पक्षपात का दोष लगाना, ये दोष लगाने वाला ही जो है सो गलती के रास्ते के ऊपर है। आचार्य पुरुषों में या और भी जितने टीकाकार हुए हैं उन्होंने जो कुछ अपनी टीका में कहा अपनी समझ के अनुसार कहा है। आज आप देखो प्रत्यक्ष के बीच के माँ गीता के ऊपर जितनी संसार में टीकाएं हैं, इतनी टीकाएं हमारे को कोई भी ग्रंथ के ऊपर देखने में नहीं आती। हमारे हिंदू धर्म के बहुत से पुस्तक हैं, वेद है माने श्रुति स्मृति इतिहास पुराण बहुत से ग्रंथ हैं, पर किसी ग्रंथ के ऊपर आप ऐसा नहीं बतला सकते कि आपने उसके ऊपर कोई अध्यार टीका हुए अध्यार समझो उसका कोई अनुवाद हुए। गीता के ऊपर समझो कि इस भगवत गीता के ऊपर आपने संग्रह किया तो करीब करीब 1000 समझो की टीका और अनुवाद के और भाष्य और उसके ऊपर निबंधन आदि अनेक प्रकार के ऐसे मिले, उनका संग्रह किया गया और वो आज से आपने प्रदर्शनी के बीच के माँ दिखाया जाना एक घोषित कर दिया गया कि 4 दिन तक जो है लोगों को ये दिखाया जाएगा। तो आप देखेंगे हर एक भाषा के बीच के हिंदी भाषा में, संस्कृत भाषा में और बंग भाषा में और गुरुमुखी में, पंजाबी भाषा में, गुजराती भाषा में, कर्नाटकी भाषा में और विदेशों की भाषा में, जैसे इंग्लिश भाषा जो है, फ्रांस जो है, अरबी जो है, फारसी जो है, उर्दू जो है, इत्यादि समझो कि जो विदेशियों की भाषा में भी, धर्मियों की भाषा में
है। भैया है बच्चे,
एक प्रकार से थी आपने ये आपको दिखाया जाता है, आप देख सकते हैं। प्रत्यक्ष के आगे प्रमाण और क्या है, जब ये बात एकदम प्रत्यक्ष है कि गीता के ऊपर अभी एक प्रकार से थी, अपने गीता प्रेस के बीच के माँ 1000 टीकाएं माने सब देशों की भाषा को लेकर करके और सब टीका अनुवाक और भाषा आदि लेकर के जिनकी संख्या करीब 1000 है। इससे मालूम होता है कि गीता जो है ये एक प्रकार से सार्वजनिक ग्रंथ है, इसको सब कोई अपनाते हैं और सब ने अपनाया है, ये एक बहुत उच्च कोटि का ग्रंथ तो है। इसी को ख्याल में रख करके स्वयं वेदव्यास जी ने समझो कि महाभारत के अंतर्गत ये बात कही कि गीता सुगीता कर्तव्य किमने शास्त्र विश्री या स्वयं पद्मनावश्य मुख पद्मात्मनिश्री कहा। या जो गीता है सुगीता कर्तव्य, सुमन अच्छी प्रकार से थी इसे का गायन करना चाहिए, अच्छी प्रकार से थी इसका अध्ययन करना चाहिए, फिर और शास्त्रों की क्या आवश्यकता है। इसका मतलब ये नहीं कि शास्त्रों की कोई आपने अवहेलना की गई है, शास्त्रों का कोई समझो कि अपमान नहीं किया गया है। गीता की महिमा के विषय में ही ये कथन है, गीता को आदर्श मान करके उसकी प्रशंसा के विषय में ये कहना है कि किमने शास्त्र विस्तृत, अने शास्त्रों के विस्तार की क्या आवश्यकता है, न कि शास्त्रों की इसके माँ हमें अवहेलना की गई है। शास्त्रों की अवहेलना की दृष्टि से ये कथन ऐसा नहीं है, गीता की प्रशंसा की दृष्टि से है। या सुन भगवान पद्मनाभ के मुख कमल से निकली है, और सब जो शास्त्र है भगवान कमलनाभ जो है, कमलनाभ कौन कि भगवान विष्णु, तो गीता तो भगवान कृष्ण के मुख से निकली ना, तो दिखलाना यह है कि जो विष्णु है वही कृष्ण है। दोनों की एकता के लिए ये बात कही गई कि भगवान विष्णु ही श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए, इसलिए ये बात बतलाई जाती है कि ये गीता जो है भगवान के स्वयं मुख कमल से निकली, और जो सब शास्त्र है वो भगवान के स्वयं मुख कमल से नहीं निकले। तो ये संकेत किया गया है कि सब शास्त्र का विस्तार हुआ वेदों से, और वेद जो है उत्पन्न हुए, वेद प्रागट हुए ब्रह्मा के मुख से, और ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई कमल से, और कमल की उत्पत्ति हुई भगवान की नाभि से। तो कमलनाभ जो भगवान है, उस कमलनाभ भगवान के कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति, ब्रह्मा से वेदों का प्रागट्य और वेदों से शास्त्रों का विस्तार, तो शास्त्रों के विस्तार के बीच के वहां समझो कि आपने भगवान की नाभि हेतु है। ये तो साक्षात भगवान अपने समझो मुखारविंद से गीता कही है, इसलिए गीता सुगीता कर्तव्य की मन शास्त्र विस्तृत, गीता को अच्छी प्रकार से सब करना चाहिए, उसका अच्छे प्रकार से गायन करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, अनुशीलन करना चाहिए, फिर और शास्त्रों के विस्तार की आत्मा के कल्याण के लिए, अपने उद्धार के लिए कोई आवश्यकता नहीं। संसार के कल्याण के लिए तो आवश्यकता है, किंतु अपनी आत्मा के कल्याण के लिए और कोई आवश्यकता नहीं। गीता के विषय में और बहुत सी बातें कहनी है, किंतु अब पाठ का समय आ गया, इसलिए व्याख्यान यहाँ समाप्त किया जाता है। 11 बजने वाले हैं। नारायण 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 श्रीमन नारायण।
नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण यावर रामचंद्र की जय मोर मुक्तवंशी वाले की जय इस केतु से किसान काशी राजवान गुरु जित कुंती भोजस्य शैव्यस्य नर पुंगव युद्धा मनुष्य विक्रांत उत्तमौजस्य वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्वे एव महारथा अस्माकं सुविशिष्टाये तन्निवोद द्विजोतमे नायका सेनश्च संज्ञातं तां ब्रवीमिति भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समत्युञ्जय अश्वत्थामा श्रीकर्णश्च सोमदा तिष्ठदैव च अन्ये च वैवसुरा मदर्थे सप्त जीविता नाना शास्त्र अर्ण सर्वे युद्ध विशारदा अप्रिया पतं तदस्माकं बलं भीष्म विरक्षितं प्रियापतं दिदमे तेषां बलं भीष्म विरक्षितं अयने सूत सर्वेषु यथा भागमवसिता भीष्मेवा विरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि सत्य संजनयन् भारतं पुरुवेद पितामह सिंहनादं विनद्योतहि शङ्कं दद्मौ प्रतापवान् ततस्तं साष्टधैर्यश्च परमा नखगोमुखा सैवाद्यन्द सुमुलो भव तत श्वेतैर्युक्ते महती सन्दिनेसितौ माधव पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्कौ प्रदद्मतु पाञ्चजन्मृजिकेषु देवदत्तं धनञ्जय कौन्द्रं दद्मौ महाशङ्कं भीमकर्म त्रिकोदर अनन्तविजयं राजा कुन्तिपुत्रो युधिष्ठिर नकुल सदेवश्च सुघोष मणिपुत्रकौ काश्यश्च परमेश्वास शिखण्डी च भारथ धृष्टद्युम्नो विराटश्च सातकीश्च पराजित द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वश्च पृथिवीपदे सौभद्रश्च महाबाहु शङ्कां दद्मु कृतकृतक् स घोषो गार्तराष्ट्राणां हृदयानि जगारय नवश्च पृथिवीं चैव तुमुलो धनुनादयन् ध्वज प्रवृत्ते शास्त्र संपाते धनुरोदम्य पांडव ऋषिकेशं कदा वाक्य निर्मा महीपते अर्जुन वाच शेनियोर्मध्ये रथं सा पयमेच्युत यावदेतानिरीक्षेहं योधुका मानवासिनां कैर्मय्या स योद्धव्ये मस्मिन् रणसमोद्यमे योत्स्यमानवेक्षेहम् ये ते प्रसमागता राष्ट्रस्य दुर्बुद्धे योधे संदेह वाच एव मुक्तो ऋषिकेशो पुरा केशे न मारत श्रेणियो द्वयोर्मध्ये स्थापित्वा रथोत्तमम् भीष्म द्रोण प्रमुख सर्वे समयीक्षितम् वाच पाच पश्चैतान् समवेतान् कुरु निधि तत्रापशक्षितम् पार्थ पितृनद पितामह आचार्यान् मातुला रात्रीन् पुत्रं पोत्रं सखी सदा ससुरां पुरिदैव तेन यो पुरयोरपि तान् समीक्षेत कौन्तेय सर्वान् बन्धूनवर्षितां कृत्या प्रिया पीष्टो विशीतं निरमब्रवीत् अर्जुनवाच जनम कृष्ण युष्म समुपासितं शीदंति मन गात्राणी मुखं च परिशुष्यति वेपतु शरीरे मे रोम हर्ष जायते दानिवं संस्ते हस्तात् स्वगप्तैव परिदयते न च शक्नोमवसातुं रमति वचने मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो नु पश्यामि भद्वा स्वजनमाहवे न कांसे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किन्नो राज्येन गोविन्द किं भोगैजीतेन वा एषा मार्ते कांसि तन्नो राजं भोगा सुखानि च स इमे वासिता युद्धे प्राणश्चर्त्वा धनानि च आचारया पितर पुत्रा तथैव च पितामह मातुला ससुरा पौत्रा शाला सम्बन्धिना सदा एतान् हन्तुमिच्छामि तो मधुसूदन अपि च लोक्यराजस्य हेतो किन्नु मयि कृते निहत्य धातराष्ट्रान्न का प्रीतिशा जनार्दन पापमेवास्मान् हत्रैतापाः तस्मान्नार्हवयं हन्तुम् धातराष्ट्रं स्वबान्धवान् स्वजनै कथं हत्वा सुखीनो श्याम माधव यद्यपि ते न पश्यन्ति लोभो तच्चेतसः कुलक्षये कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मानि वर्तितुम् कुलक्षये कृतं दोषं प्रपश्चिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्म सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृष्णे मधर्मो अभिवत्युतः अधर्माभिवात् कृष्ण प्रदुषन्ति कुलक्रियः ऋतुदुष्टासुवास्नेय जायते वर्णशङ्करः शङ्करो नरकायैव कुर्घ्नानां कुलश्च।